नमस्कार। आज हम 18वीं शती के एक ऐसे विचारक की दुनिया में झांक रहे हैं जिनके विचारों ने न सिर्फ अपने समय को बल्कि आज तक हमारी सोच को कहना चाहिए हिलाकर रख दिया है। जॉन जाक रूसो, एक बेहद प्रभावशाली नाम लेकिन उतने ही विवादास्पद भी।
बिल्कुल, और रूसो के इस जटिल ताने बाने को समझने में हमारी मदद करेंगे रॉबर्ट वॉकलर। वो रूसो पर दुनिया के सबसे बड़े जानकारों में से एक माने जाते थे, तो आज हम उनकी किताबों और उनकी व्याख्याओं के जरिए रूसो के विचारों की गहराई में उतरने की कोशिश करेंगे।
और ये समझना जरूरी है कि ये जो 250 साल पुराने विचार हैं, ये आज भी क्यों मायने रखते हैं, है ना? क्योंकि रूसो ने जो सवाल उठाए थे, क्या तरक्की हमेशा अच्छी होती है, समाज में इतनी गैर बराबरी क्यों है, असली आजादी क्या है, क्या व्यक्तिगत इच्छा और समाज की भलाई साथ चल सकती है, ये सवाल आज भी उतने ही तीखे हैं, शायद पहले से भी ज्यादा। क्या कहते हैं?
एकदम सही कहा, ये सवाल तो आज की दुनिया में और भी ज्यादा गूंजते लगते हैं। तो चलिए वॉकलर के नजरिए से रूसो की इस दुनिया की पड़ताल शुरू करते हैं। पहले जरा रॉबर्ट वॉकलर के बारे में जान ले। 1942 में जन्मे, 2006 में उनका देहांत हुआ। वो राजनीतिक विचारों के इतिहास के बहुत जाने माने विद्वान थे, खासकर प्रबोधन काल, जिसे अंग्रेजी में इनलाइटनमेंट कहते हैं।
हाँ, इनलाइटनमेंट।
और रूसो पर तो उनकी पकड़ जबरदस्त थी। उन्होंने मैनचेस्टर, कैम्ब्रिज एक्सेट्रा जैसे बड़े विश्वविद्यालयों में पढ़ाया भी।
और देखिए, वोकलर की बात खास इसलिए है क्योंकि वो सिर्फ मतलब ऊपरी तौर पर रूसो को नहीं देखते थे। उन्होंने रूसो के मूल फ्रेंच लेखन, उनके संगीत, उनके कम जाने पहचाने निबंधों तक का गहरा अध्ययन किया। वो घिसी पिटी बातों से आगे गए, जहां कई लोग रूसो को तानाशाही का समर्थक मान लेते थे।
हाँ, ये एक आम धारणा है।
बिल्कुल, वोकलार ने उन्हें एक ज्यादा जटिल रूप में देखा, एक कट्टर लोकतंत्रवादी के तौर पर सामाजिक मानवशास्त्र की नींव रखने वालों में से एक, और आधुनिक समाज में व्यक्ति का जो अकेलापन है, उसका अलगाव, जिसे एलिनेशन कहते हैं,
हाँ, एलिनेशन,
उसके पैने आलोचक के तौर पर।
हाँ बिल्कुल। वॉकलर का काम सिर्फ जानकारी देना नहीं है, बल्कि वो रूसो पर अपने जीवन भर के शोध का निचोड़ पेश करते हैं। वो रूसो को उनके तमाम विरोधाभासों के साथ दिखाते हैं, एक ऐसी शख्सियत जिसने आधुनिक लोकतंत्र और उसकी आलोचना दोनों की जमीन तैयार की।
तो वोकलर के मुताबिक रूसो कौन थे? दिलचस्प बात यह है कि वोकलर उन्हें प्रबोधन यानी एनलाइटनमेंट का दुश्मन नहीं मानते,
नहीं बिल्कुल नहीं,
बल्कि उसका सबसे गहरा और चुनौती देने वाला अंदरूनी आलोचक कहते हैं। मतलब रूसो ने प्रबोधन के ही हथियार इस्तेमाल किए, जैसे तर्क, आलोचना, मानव स्वभाव का अध्ययन, और उन्हीं से प्रबोधन के कुछ सबसे प्यारे सपनों पर सवाल खड़े कर दिए।
हाँ, जैसे ये मानना कि प्रगति हमेशा अच्छी होती है,
बिल्कुल,
या आधुनिक समाज पहले के समाजों से बेहतर है, इन सब पर उन्होंने सवाल उठाए।
सही,
बिल्कुल, वॉकलर दिखाते हैं कि रूसो का केंद्रीय सवाल ये था, इंसान जो कुदरती तौर पर अच्छा और आज़ाद पैदा हुआ था, आखिर उन्हीं समाजों के हाथों कैसे भ्रष्ट, असमान और गुलाम बन गया, जिन्हें उसने अपनी भलाई के लिए बनाया था। ये एक पहेली है जिससे रूसो जिंदगी भर जूझते रहे, ऐसा लगता है।
और इसी से जुड़ा है सामाजिक अलगाव, सोशल एलियनेशन का मुद्दा। वॉकलर जोर देते हैं कि रूसो ने कितनी गहराई से समझा था कि कैसे कला, विज्ञान और खासकर निजी संपत्ति के आने से इंसान अपने असली स्वरूप से, अपनी सहजता से कट गया है।
हाँ
हम दूसरों को दिखाने के लिए जीने लगते हैं, अपनी अंदरूनी आवाज भूल जाते हैं।
बिल्कुल, लेकिन रूसो सिर्फ समस्या बताकर रुके नहीं। वॉकलर ये स्पष्ट करते हैं कि उनका मकसद कोई पुराने जमाने में लौटना नहीं था, वो एक नए तरह के समाज और राजनीति की कल्पना कर रहे थे।
अच्छा,
हाँ, एक ऐसा समाज जो सामान्य इच्छा यानी जनरल विल पर आधारित हो, ताकि आधुनिक इंसान अपनी खोई हुई आज़ादी और नैतिक गरिमा कुछ हद तक वापस पा सके। यहीं पर रूसो का वो विरोधाभास उभरता है। उनके विचारों ने लोकतंत्र को भी प्रेरणा दी,
हाँ
और तानाशाही की तरफ झुकाव रखने वालों ने भी उनका इस्तेमाल किया।
चलिए अब रूसो के विचारों की परतों को थोड़ा और खोलते हैं, जैसा वॉकलर हमें दिखाते हैं। शुरुआत रूसो के जीवन और उनके शुरुआती क्रांतिकारी विचारों से करते हैं, खासकर उनके पहले दो डिस्कोर्स या कहिए निबंधों से। रूसो का अपना जीवन ही अजीब विरोधाभासों से भरा था। जेनेवा के नागरिक, पर जिंदगी फ्रांस में निर्वासन में बीती। एकांत पसंद करते थे पर शोहरत भी चाहते थे। नैतिकता पर लिखते थे पर अपने बच्चों को अनाथालय छोड़ दिया।
हाँ, ये बातें चौंकाती हैं।
बिल्कुल, वॉकलर मानते हैं कि इसी बाहरीपन ने, आउटसाइडर स्टेटस ने, उन्हें समाज को एक अनोखे आलोचनात्मक नजरिए से देखने की क्षमता दी।
उनका पहला धमाका था कला और विज्ञान पर पहला डिस्कोर्स। इसमें उन्होंने सीधी चोट की कि कला और विज्ञान की तरक्की ने नैतिकता को सुधारा नहीं, बिगाड़ा है।
बिगाड़ा है,
हाँ। सभ्यता हमें विलासिता, दिखावा, पाखंड सिखाती है, और असली नागरिकी गुण जैसे साहस, सादगी, देश प्रेम, ये सब कमजोर करती है। बाहर से हम भले ही सभ्य दिखें, पर अंदर से खोखले हो जाते हैं।
ये तो वाकई चौंकाने वाला तर्क था उस जमाने के हिसाब से। फिर आया असमानता की उत्पत्ति पर दूसरा डिस्कोर्स। वोक्लर इसे रूसो की मानवशास्त्र की मास्टरपीस कहते हैं।
हाँ बिल्कुल।
इसमें रूसो ने प्रकृति की अवस्था यानी स्टेट ऑफ नेचर का मशहूर विचार प्रयोग किया, मतलब समाज बनने से पहले इंसान कैसा था।
कैसा था?
रूसो के मुताबिक वो जंगली नहीं बल्कि अकेला सरल प्राणी था। उसे दो मूल भावनाएं चलाती थी, अमोर द सोए यानी सेल्फ प्रिजर्वेशन, खुद को बचाए रखने की प्रवृत्ति,
सेल्फ प्रिजर्वेशन जैसा।
हाँ बिल्कुल, और दूसरी थी पितिए यानी करुणा, दूसरों का दुख देखकर पिघल जाना, दया।
अच्छा, तो ये थी प्राकृतिक अवस्था। इसका अंत कैसे हुआ?
रूसो के अनुसार निजी संपत्ति के आविष्कार से। वो लिखते हैं, और ये लाइन बहुत मशहूर है, पहला व्यक्ति जिसने जमीन के एक टुकड़े को घेरकर ये कहने की सोची, ये मेरा है, और जिसे विश्वास करने के लिए पर्याप्त भोले लोग मिल गए, वही नागरिक समाज का असली संस्थापक था।
ओहो, यहीं से सारी गड़बड़ शुरू हुई।
हाँ, उनके हिसाब से यहीं से शुरू हुई होड़, ईर्ष्या, अमीरी गरीबी, और यहीं से जन्म हुआ एक नए, कहिए जहरीले किस्म के आत्मप्रेम का, अमूर प्रॉपर।
अमूर प्रॉपर, ये क्या चीज है? अमूर द सोई तो समझ आया, सहज आत्मप्रेम, ये अमूर प्रॉपर क्या है?
ये वो तुलना वाला घमंड है। अमूर दसोई तो सहज है, अपनी देखभाल करना, लेकिन अमूर प्रॉपर समाज में पैदा होता है। ये दूसरों की नजरों में अच्छा दिखने, उनसे बेहतर माने जाने की लगातार इच्छा है।
अच्छा, जैसे आजकल हम देखते हैं।
बिल्कुल, आज की सोशल मीडिया वाली दुनिया, सोचिए लाइक्स, फॉलोअर्स, दिखावा, ये सब अमूर प्रॉपर का ही खेल है। रूसो कहते हैं कि समाज की ज्यादातर बुराइयां ईर्ष्या, प्रतिस्पर्धा, गुलामी, वर्चस्व, इसी अमूर प्रॉपर से पैदा होती हैं। हम अपनी कीमत अपनी नजरों में नहीं, दूसरों की नजरों में आंकने लगते हैं।
बाप रे, ये तो आज भी कितना सच लगता है ना? तो अगर समाज ने हमें ऐसा बना दिया है, तो रास्ता क्या है? क्या कोई रास्ता है? यहीं पर शायद रूसो का सबसे मशहूर काम आता है, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट।
बिल्कुल, सामाजिक अनुबंध, और इसकी शुरुआत ही उन अमर पंक्तियों से होती है, मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है और हर जगह वो जंजीरों में जकड़ा हुआ है। रूसो पूछते हैं, क्या हम समाज में रहते हुए भी अपनी प्राकृतिक आजादी का कुछ हिस्सा बचा सकते हैं? कोई तरीका है?
उनका जवाब था, एक नया सामाजिक समझौता। इसमें हर नागरिक अपने अधिकार किसी राजा को नहीं सौंपता।
नहीं तो किसे?
बल्कि पूरे समुदाय को सौंपता है। इससे एक सामूहिक इकाई बनती है, सॉवरेन। ये सॉवरेन कोई एक व्यक्ति नहीं, बल्कि सभी नागरिक मिलकर हैं, और ये सामान्य इच्छा से चलते हैं।
हाँ, ये सामान्य इच्छा का विचार थोड़ा थोड़ा मुश्किल लगता है समझने में। ये क्या है असल में?
हाँ, जटिल तो है। वॉकलर समझाते हैं कि ये सबकी निजी इच्छाओं का जोड़ नहीं है, नहीं, ये पूरे समुदाय का साझा तर्कसंगत हित है, वो चीज जो सबके लिए अच्छी हो, न कि सिर्फ कुछ लोगों या गुटों के लिए।
और यहीं पर रूसों की वो सबसे ज्यादा विवादित बात आती है, जिस पर बहुत बहस हुई है, कि जो सामान्य इच्छा का पालन नहीं करेगा, उसे समुदाय पालन करने पर मजबूर करेगा।
हाँ,
और इसका मतलब है कि उसे स्वतंत्र होने के लिए मजबूर किया जाएगा। ये सुनने में ही अजीब लगता है, स्वतंत्र होने के लिए मजबूर करना।
हाँ, बिल्कुल विरोधाभासी लगता है, लेकिन वॉकलर इसे रूसो की नैतिक स्वतंत्रता की धारणा से जोड़ते हैं। रूसो के लिए असली आजादी मन मर्जी करना नहीं है।
तो क्या है
असली आजादी? है उस कानून का पालन करना जिसे हमने खुद समुदाय के सदस्य के तौर पर अपने लिए बनाया है। तो जब समुदाय हमें सामान्य इच्छा मानने पर मजबूर करता है, तो एक तरह से वो हमें हमारी अपनी ही उच्चतर तर्कसंगत इच्छा का पालन करने पर मजबूर कर रहा है। हमें हमारी निचली स्वार्थी इच्छाओं की गुलामी से आजाद कर रहा है। ये गहरा विचार है, पर समझने लायक है।
साथ ही रूसो संप्रभु यानी कानून बनाने वाले सभी नागरिक और सरकार यानी कानून लागू करने वाली संस्था में फर्क करते हैं।
हाँ, बहुत महत्वपूर्ण।
और सबसे जरूरी बात, वो कहते हैं कि संप्रभुता किसी और को सौंपी नहीं जा सकती, उसका प्रतिनिधित्व नहीं हो सकता। लोगों को सीधे कानून बनाने में हिस्सा लेना चाहिए। ये तो सीधे सीधे प्रत्यक्ष लोकतंत्र का बड़ा समर्थन है।
बिल्कुल। तो ये तो हुआ राजनीतिक ढांचा, लेकिन ऐसे समाज में रहने लायक नागरिक कैसे बनेंगे जो अमूर प्रॉपर के बुरे असर से मुक्त हों? इसका जवाब रूसो ने अपनी एक और मशहूर किताब में दिया, एमिल या शिक्षा पर।
एमिल,
हाँ,
ये भी एक क्रांतिकारी किताब मानी जाती है, शिक्षा पर। रूसो ने इसमें नेगेटिव एजुकेशन यानी नकारात्मक शिक्षा का विचार दिया।
नकारात्मक शिक्षा, ये क्या है?
इसका मतलब ये नहीं कि शिक्षा बुरी है, मतलब यह है कि बच्चे के दिमाग में ज्ञान ठूसो मत, शुरू में कम से कम, बल्कि उसे समाज के बुरे असर से बचाओ। शुरू के सालों में शिक्षक का काम बच्चे को बुराई, गलत रीति रिवाजों, यहाँ तक कि किताबों से भी दूर रखना है।
किताबों से भी दूर? ये तो अजीब है।
हाँ, शुरू में रूसो का मानना था कि किताबी ज्ञान बच्चे की स्वाभाविक जिज्ञासा और समझ को दबा देता है, उसे सीधे प्रकृति और अपने अनुभव से सीखने देना चाहिए। शिक्षा बच्चे के विकास के साथ कदम मिलाकर चलनी चाहिए, पहले शारीरिक विकास पर ध्यान, फिर इंद्रियों पर, फिर तर्क पर, और आखिर में किशोरावस्था में नैतिकता और समाज की समझ विकसित करना।
तो लक्ष्य क्या है इस शिक्षा का?
लक्ष्य है एक ऐसा इंसान बनाना जो प्रामाणिक हो, आत्मनिर्भर हो, और समाज में रहते हुए भी उसके भ्रष्टाचार से, खासकर अमूर प्रोपर से, बचा रहे। तभी वो सामान्य इच्छा को समझकर एक अच्छा नागरिक बन पाएगा।
और रूसो की कहानी यहीं खत्म नहीं होती, वॉकलर उनके निजी लेखनों पर भी ध्यान दिलाते हैं, खासकर कन्फेशंस पर।
हाँ, उनकी आत्मकथा।
बिल्कुल, इन किताबों में रूसो ने जैसे आधुनिक आत्मकथा का आविष्कार ही कर दिया, अपने अंदर की दुनिया की एक बेहद ईमानदार, बेबाक और कभी कभी परेशान करने वाली खोज। ये उनकी प्रामाणिकता की तलाश और अकेलेपन के एहसास को, उत्पीड़न की भावना को दिखाती हैं।
तो रूसो की विरासत क्या है? वॉकलर दिखाते हैं कि ये कितनी मिलीजुली, कितनी जटिल है। फ्रांसीसी क्रांति के नेता उन्हें नायक मानते थे, खासकर जैकोबिन्स।
हाँ, उन्होंने सामान्य इच्छा का खूब इस्तेमाल किया।
बिल्कुल, दूसरी तरफ रोमांटिक कवि और लेखक प्रकृति और भावना पर उनके जोर से प्रभावित थे। लोकतंत्र के समर्थक उनकी जनसंप्रभुता की बात करते हैं, तो आलोचक सामान्य इच्छा में तानाशाही का खतरा देखते हैं। रूसो हमें आज भी सोचने पर मजबूर करते हैं, है ना?
बिल्कुल करते हैं। अगर हम वोकलर के जरिए रूसो के मुख्य संदेशों को समेटें तो कुछ बातें साफ उभरती हैं। पहली, सभ्यता का वो दोहरापन, कैसे समाज हमें हमारी प्राकृतिक अच्छाई से दूर ले जाता है। प्रकृति एक मानक है, एक आईना है, जिसमें हम समाज की बनावट और नैतिक गिरावट देख सकते हैं।
हाँ, ये बात तो महसूस होती है जब हम शहर से दूर प्रकृति में जाते हैं।
बिल्कुल। दूसरा बड़ा संदेश है वो मनोवैज्ञानिक बदलाव, अमूर दसोई सहज आत्म प्रेम से अमूर प्रॉप तुलनात्मक घमंड तक का सफर। ये अमूर प्रॉपरी है जो हमें दूसरों से तुलना करने, उनसे बेहतर दिखने की होड़ में लगा देता है।
और आज की दुनिया में तो ये बहुत ज्यादा है। सोशल मीडिया पर वैलिडेशन की भूख, स्टेटस सिंबल, ये सब शायद उसी अमूर प्रॉप का नतीजा है।
हाँ, लगता तो यही है। तीसरा, सच्ची आजादी की तलाश। रूसो के लिए ये सिर्फ मनमर्जी नहीं बल्कि स्वशासन है, उन कानूनों के तहत रहना जिन्हें बनाने में हमने खुद हिस्सा लिया हो, यानी सामान्य इच्छा का पालन। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि एक नागरिक के तौर पर हमारी जिम्मेदारियां क्या हैं, सिर्फ हमारे अधिकार ही नहीं।
चौथा, प्रामाणिकता का संघर्ष, दिखावे की दुनिया में असली कैसे रहा जाए। रूसो ने अपने जमाने के समाज के पाखंड की कड़ी आलोचना की। क्या आज हम भी काम पर, समाज में अक्सर एक मुखौटा नहीं पहनते? रूसो हमें अपने असली स्व के प्रति ईमानदार रहने की चुनौती देते हैं।
और पांचवा, जो वॉकलर की मुख्य स्थापना है, जिसे आपने शुरू में भी कहा, रूसो प्रबोधन के दुश्मन नहीं बल्कि उसके अंदरूनी आलोचक थे। उन्होंने तर्क का ही इस्तेमाल करके तर्क और प्रगति की सीमाओं पर सवाल उठाए। ये एक बहुत बारीक और जरूरी समझ है रूसो के बारे में।
रूसो के कुछ विचार तो इतने शक्तिशाली हैं कि वो आज भी सीधे दिल पर लगते हैं। जैसे वो कहते हैं, हमारी आत्माएं उसी अनुपात में भ्रष्ट हुई हैं जिस अनुपात में हमारे विज्ञान और कला पूर्णता की ओर बढ़े हैं। ये सीधी चुनौती है सोच को कि ज्यादा विकास मतलब ज्यादा अच्छाई।
हाँ, बिल्कुल। और ये विचार आज की शिक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े करते हैं। एमिल हमें सोचने पर मजबूर करता है, क्या हम बच्चों को सिर्फ नौकरी के लिए तैयार कर रहे हैं या उनकी जिज्ञासा, उनकी नैतिकता, उनके अंदरूनी लचीलेपन को भी बढ़ा रहे हैं? आज के सूचना विस्फोट के युग में बच्चों को बाहरी दबावों से बचाने का उनका विचार, वो नकारात्मक शिक्षा कितना प्रासंगिक लगता है।
और राजनीतिक स्तर पर देखें तो सामान्य इच्छा का विचार हमें अपने छोटे मोटे स्वार्थों से ऊपर उठकर सोचने को कहता है। समुदाय के लिए सच में क्या अच्छा है? आज जब समाज इतना बटा हुआ है, इतना ध्रुवीकृत है, तब आम भलाई पर मिलकर सोचना कितना जरूरी हो गया है।
पर्यावरण के नजरिए से देखें तो प्रकृति के प्रति रूसो का सम्मान आज के पर्यावरण आंदोलनों की आहट जैसा लगता है। शहर और विलासिता की उनकी आलोचना प्रकृति से दोबारा जुड़ने की हमारी जो इच्छा होती है उससे कितनी मिलती है। प्रकृति में समय बिताना सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि मानसिक संतुलन और खुद को पाने का जरिया है, ये रूसो का दर्शन सुझाता है।
और सामाजिक गैर बराबरी पर उनका विश्लेषण, खासकर दूसरे डिस्कोर्स में, आज भी चौंकाने वाला है। कैसे निजी संपत्ति और कानून अक्सर अमीरों की ताकत को बढ़ाते हैं और गरीबों को हाशिए पर ढकेलते हैं, ये अनियंत्रित पूंजीवाद और सामाजिक अन्याय की एक जबरदस्त आलोचना है जो आज भी प्रासंगिक है।
तो कुल मिलाकर वॉकलर हमें दिखाते हैं कि रूसो कोई आसान जवाब देने वाले विचारक नहीं थे। वो मुश्किल सवाल पूछते थे जो आज भी हमें परेशान करते हैं, हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। वो एक ऐसे विचारक की तस्वीर पेश करते हैं जो व्यक्तिगत आजादी और सामूहिक एकता दोनों को अहमियत देता था। एक जटिल संतुलन।
हरेश, गुई चर्चा से कुछ बातें साथ ले जानी हो तो मेरे लिए पहली है ये समझना कि समाज ने हमारे अंदर कैसे अमूर प्रॉपर यानी दिखावे और तुलना वाले घमंड को भर दिया है और कैसे ये हमारी खुशी का, हमारी प्रामाणिकता का दुश्मन है। और दूसरी कि सच्ची आज़ादी का मतलब सिर्फ अपनी मर्जी चलाना नहीं बल्कि सामूहिक भलाई के लिए बने कानूनों में सक्रिय भागीदारी है।
मेरे लिए सबसे अहम बात यह है कि वोकलर रूसो को इतिहास की धूल फेंकने वाला कोई पुराना विचारक नहीं मानते बल्कि हमारा समकालीन मानते हैं। अलगाव, गैर बराबरी, प्रामाणिकता की खोज, ये मुद्दे आज पहले से ज्यादा गहरे हैं। रूसो से जूझना, उनके विचारों को समझना आज भी उतना ही जरूरी और फायदेमंद है जितना उनके अपने जमाने में था।
बिल्कुल, रूसो हमें लगातार सोचने पर मजबूर करते हैं कि हम कैसा समाज बनाना चाहते हैं और उस समाज में एक व्यक्ति के तौर पर हम कैसे जीना चाहते हैं।
और शायद यही सबसे बड़ा सवाल है जो वो हमें विरासत में दे गए हैं। क्या आज की इस जटिल बिखरी हुई दुनिया में, जहां अमूर्त परंपरा का इतना बोलबाला है, क्या रूसो की सामान्य इच्छा और प्रामाणिक जीवन का सपना कभी हकीकत बन सकता है, या ये सिर्फ एक खूबसूरत अधूरा ख्वाब बनकर रह जाएगा? इस पर सोचना तो बनता है। मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।